ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 59, इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्य चैव व्यवस्थितिम् कंसस्तुष्ट मन राजान् प्रहसन इदम् अब्रवी। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थिति कंसस्तुष्ट मन राजन् प्रहसन इदम् अब्रवी। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थिति कंसस्तुष्ट मन राजन् प्रहसन इदम् अब्रवी। दृष्ट्वा देखकर समत्वम सुख या दुख से अविचलित समभाव से तत् उस शौरे वसुदेव के सत्य सत्य में च निसंदेह एव निश्चित ही व्यवस्थितिम दृढ़ परिस्थिति कंसह कंस ने तुष्ट मनाहा अत्यंत संतुष्ट होकर अपना वचन निभाने के लिए पहली संतान लाकर सौंपने के वसुदेव के आचरण से राजन हे महाराज परीक्षित प्रहसन हंसते हुए इदम यह अब्रवीत कहा। अनुवाद एवं तात्पर्य शील एसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में समभाव बने रहे तो अत्याधिक प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा। तात्पर्य, इस श्लोक में समत्वम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समत्वम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सुख या दुख से अप्रभावित रहते हुए सदैव समरस रहता है। वसुदेव इतने समरस थे कि अपने प्रथम जात पुत्र को कंस के हाथों मारे जाने के लिए सौंपते हुए भी तिनी प्रकार से विचलित नहीं हुए। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में कहा गया है, दुखेशानुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगतस्पृह। भौतिक जगत में न तो किसी को सुखी रहने के लिए अत्यंत उत्सुक होना चाहिए, नहीं भौतिक दुख से अधिक दुखी होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यांस तामसी तक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थाई प्राकट्य और काल क्रम में इनका दृश्य हो जाना शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के समान आने और जाने के बराबर है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि विचलित हुए बिना इन्हें सहन करना सीखें। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तथाकथित दुख या सुख से कभी विचलित नहीं होता और वसुदेव जैसे महान भक्त पर तो ये बात विशेष रूप से लागू होती है जिन्होंने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा ऐसे कर दिखाया। वे कंस के हाथों अपनी पहली संतान मारे जाने के लिए सौंपते समय तनिक भी उद्विग्न नहीं थे। हरे कृष्ण। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है काफी समय बाद इस राधा राधिका रमण के पवित्र धाम में वैष्णव की सेवा का अवसर मिल रहा है। मैं आप सबका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि वैष्णव की सेवा करना ऐसा है जैसे गंगा का जल लेकर वापस गंगा को अर्पण करना। वैष्णव की कृपा से हम बोल सकते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। मैं गौर पूर्णिमा से कुछ समय पहले मायापुर था लेकिन बाद में मुझे पुणे जाना था गौर पूर्णिमा के लिए, तो दुख होता है मायापुर छोड़ने में। और अभी मैं वृंदावन में था पिछले चार दिन और अभी आज आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। अभी आ रही है? नहीं, पीछे स्पीकर शायद कार्य नहीं कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी सुनाई पड़ रहे हैं? नहीं, ओके। थोड़ा सा और बढ़ा। अच्छा अच्छा, कोई भक्त पीछे। तो मैं जब मायापुर छोड़कर लौटा तो थोड़ा दुख लगता है, कल वृंदावन छोड़ने दुख लगता है, लेकिन राधिका रमण आने पे वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी तीनों यहीं पर हैं क्योंकि यहाँ राधा रानी के साथ कृष्ण रमण कर रहे हैं, वो वृंदावन है, और प्लस यहाँ गौर नेताई भी हैं यानी मायापुर है। तो जब भी हमें भगवान के भक्तों के संगति मिले, विशेष करके संग में अगर कुछ भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिले या सुनने का अवसर मिले, तो भगवान की विशेष कृपा मान लीजिए। तो आज जो ये प्रसंग चल रहा है ये भागवत के दशम स्कंद का पहला अध्याय है, भगवान के जन्म होने के पहले की कथा है जिसमें वसुदेव जी कंस को अपना पहला उत्पन्न पुत्र जो है वो सौंप रहे हैं। वसुदेव और देवकी का चरित्र बहुत ही उच्च कोटि का है। कैसे उन्होंने कितने कष्ट सहन किए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। पूर्व जन्म में प्रिशनी और सुतप है ना, ये दोनों का नाम पिछले जन्म प्रिशनी और सुतप था, और बहुत साल तपस्या करने के बाद उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो। इन तपस्या करने के बाद भी वो अंत नहीं था तपस्या का। बाद में जब वो धरातल पर आए, आप जानते हैं कथा कि कैसे जब देवकी का विवाह होना था वसुदेव जी के साथ, तब कंस ने वो आकाशवाणी सुनी। पहले तो कंस बड़े प्रेम से अपनी बहन को छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर जब उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का आठवां पुत्र उनका काल होगा, तब उसका प्रेम सब क्रोध में परिवर्तित हो गया। लेकिन वास्तविक प्रेम नहीं था, वो स्वार्थ का प्रेम था। प्रभुपाद जी कई बार मजाक में कहते हैं, व्हाट इज दिस मटेरियल लव, आई लव यू एंड देन आई हेट यू। ये थोड़े समय के लिए प्रेम होता है, जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो प्रेम फिर खत्म हो जाता है। तो कंस ने अब देखा कि मेरे लिए खतरा है, तो अपनी बहन को मारने के लिए भी तैयार हो गए। तब वसुदेव जी ने बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कंस सुनने को तैयार नहीं था। तब उसने सोचा कि इस समय किस तरह से मुझे अपनी पत्नी के प्राण को बचाना है, तो उन्होंने वचन दिया कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। तो ये बैकग्राउंड है आज के श्लोक का। श्री वसुदेव और देवकी, उनको पता था कि अभी जो संतान होनी है अंततःकरण उसका वध करने वाला है, तो फिर क्यों वसुदेव और देवकी इस तरह संतान उत्पत्ति में लग रहे थे? उनको जब पता ही है कि हमारे उत्पन्न होने वाला बालक की मृत्यु होनी है, तो क्यों ये जन्म का बच्चे को जन्म दे? ऐसा नहीं है कि उनकी इंद्रियां वश में नहीं थी, वो तो महान योगी थे, लेकिन वो जानते थे कि अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले। कृष्ण के प्रकट होने के लिए ये कष्ट हमें स्वीकार करना है। वसुदेव और देवकी ने कष्ट सहन किए, अपने स्वयं के पुत्र की अपनी आंखों से मृत्यु को देखा, और अंत में कृष्ण प्रकट भी हुए और थोड़े समय वसुदेव के पास रहे और बस फिर तुरंत गोकुल चले गए। जैसे लगता है बड़ा विचित्र है, नहीं, इन्वेस्टमेंट वसुदेव जी ने किया और रिटर्न जो नंद महाराज को मिल गया, नहीं, ये बड़ा विचित्र बिजनेस है। हमने बड़े मेहनत से सब इन्वेस्टमेंट किया और विड्रॉ करने से पता चला किसी और ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन वसुदेव देवकी सोच रहे थे बस ये कृष्ण की इच्छा। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई एरिया में प्रचार करते हैं और कोई रिजल्ट आता ही नहीं है, बाद में कोई और भक्त आते हैं और हमने जो मेहनत की है उसका फल उसको मिल जाता है, तो हम सोचते हैं अरे बाप रे इतनी मेहनत की क्या फायदा हो। लेकिन वास्तव में हमें क्या देखना है कि चाहे हमें फल मिले या फल कोई और भक्त को मिले, अंत में फल कृष्ण को मिल रहा है, फल कृष्ण को मिल रहा है। भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती, कि भक्त जानते हैं कि सब भोक्तारम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, जो सारे यज्ञ तपस्या है उसके एंजॉयर भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारा जीवन है, कृष्ण को भूल जाना ही मृत्यु है। एक भक्त का मतलब है उसके जीवन में एक ही उद्देश्य है कि कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारी परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं, वो एक सुंदर भजन में भक्त की चेतना का वर्णन करते हैं, बतलाते हैं इस भजन में कि हे कृष्ण तोमार सेवाते जेई ते दुख सेई तो परम सुख, आपकी सेवा में जो कष्ट है जो विपत्ति है जो कठिनाई है वही मेरे लिए परम सुख है। भक्त तो खुशी होती है, भौतिक दुनिया में लोग सुख में सुखी होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, लेकिन एक भक्त जो है वो दुख में भी सुखी होता है और सुख को सहन कर लेता है। ये बड़ा अजीब लगता है, नहीं बोलूं प्रभु सुख सहन कर लो और दुख को एंजॉय करो, क्यों? उसको पता होता है जब मुझे दुख आ रहे हैं इसका मतलब पूरे जन्म के सब जो बुरे कर्म है नष्ट हो रहे हैं। आपको बताया जाए कि आपके बुरे नेगेटिव बैलेंस भी है पॉजिटिव भी है, पहले आप क्या खत्म करना चाहोगे? तो बोले कि नेगेटिव सब खत्म हो जाए फिर पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी विपत्ति आए कष्ट आए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, पूर्व मेरे कर्मों के कारण मुझे बहुत भयानक फल मिलना था लेकिन भगवान ने मुझे छोटा सा रिएक्शन दे दिया, शायद मेरा पूरा गला कट जाना था लेकिन भगवान ने सिर्फ थोड़ा स्क्रैच कर दिया, है ना। भगवान बहुत दयालु है, स्पेशली अगर आप कृष्ण नाम जप में लगे हैं, अगर आपने गुरु का आश्रय ले लिया तब आप भगवान की शरण में आ गए, आप योग माया में, तब जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो भगवान की विशेष कृपा है। एक भक्त जो है वो भगवान की डायरेक्ट संरक्षण में, भौतिक दुनिया में जो लोग हैं वो भी भगवान की शरण में हैं लेकिन वो महामाया के अधीन है, लेकिन जो वैष्णव हैं आप सब महात्मा, महात्मा मतलब जो हमेशा गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि आप लोग हमेशा हरि नाम लेने के लिए बोलते हैं, हरे हमेशा कीर्तन करते हैं, भगवत गीता में कहाँ बोला गया? तो प्रभुपाद जी ने ये श्लोक जवाब दिया, सततम कीर्तयन्तो मां। महात्मा का मतलब भी नहीं है कि लंबी शिखा है भगवे कपड़े हैं चमकता हुआ तिलक है, ये ना भगवे कपड़े नहीं, महात्मा मतलब जो सतत भगवान का नाम ले रहे। आप में से कितने भक्त ले रहे हैं सतत नाम? कभी कभी नाम ले रहे हैं, धीरे धीरे सतत नाम पे पहुंचना चाहिए। अभी जब 16 माला जप करते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस है, वो तैयारी है, जैसे बच्चे को सिखाया जाता है बेटे हाथ पकड़ के चलो इधर से उधर बिना हाथ पकड़े चलो, और बच्चा अगर इस दीवार से उस दीवार चल जाए बिना हाथ पकड़े तो माता पिता ताली बजाते, लेकिन 16 साल होने के बाद भी अगर इतना ही चलते हैं तो कोई ताली नहीं बजाना। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं, आई हैव केप्ट 16 राउंड्स फॉर बिगिनर्स। एक्चुअली 16 माला है बिगिनर्स के लिए शुरुआत से, यानी जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रभुपाद जी अपेक्षा करते हैं कि हम जब बढ़ाएंगे। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जब शुरू किया था न्यूयॉर्क में, तब भक्तों को उन्होंने कहा था कि आप कितना करें शुरुआत में, 64 माला, 64। लेकिन आप जानते हैं भक्त कितने चतुर होते हैं, कृष्ण जय भजे से ही बड़ा चतुर, तो इतना अच्छा बार्गेनिंग किया है, 75% डिस्काउंट मिल गया। प्रभुपाद जी बोला नहीं नहीं प्रभुपाद हम बहुत बिजी हैं, वो दूसरे भी काम होते हैं। ऑल राइट 32 करिए। नहीं नहीं हम विदेश से हैं, हमारा मन बहुत चंचल है। ठीक है 16 एंड नो लेस, 16 से कम नहीं। इसका मतलब प्रभुपाद अलाउ करते तो भक्त 2 या 4 पे भी आ जाते। लेकिन प्रभुपाद जी का उद्देश्य 16 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, उद्देश्य है सततम कीर्तन। एटलीस्ट हमारी इच्छा होनी चाहिए, हो सकता है माला पे हम 16 ही करें लेकिन हृदय में या उंगली में या काउंटर पे एक्स्ट्रा जप करते रहें, या हो सके तो माला पे करें तो और भी अच्छा, क्योंकि अंत समय भगवान को याद करना है। अगर आप सिर्फ सुबह याद कर रहे हैं, दोपहर को भूल रहे हैं, और मान लो मृत्यु दोपहर को हो गई तो। वैसे मैंने सुना दिल्ली में दोपहर में नहीं होती मृत्यु, नहीं ऐसा है? मेरे को याद आ रहा है जब मैं इसके पहले पूना में था और मेरी सेवा थी अध्यक्ष के रूप में, तो एक भक्त जो है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 55 या 56 वर्ष थी, और वो अपने बेटे के बेटे को लेकर चल रहे थे, ऐसे बच्चे को हाथ पकड़ के, अचानक उनको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई। तो मैंने जब पत्र लिखा महाराज जी को, तो उन्होंने पूछा कि उस समय उस दिन का जप पूरा हुआ था क्या, क्या उन्होंने उस दिन का जप पूरा किया था? तो मैंने पता लगाया वो सवेरे ही जप कर लेते, तो फिर मुझे जवाब मिला यस, फिर अच्छा है, अच्छी गति है, जिसने नाम ले लिया 16 माला उसका ऑस्पिशियस डेस्टिनी। इसलिए भक्तों से हमेशा ये सुझाव देता हूँ कि जिस दिन मृत्यु होने की संभावना है उस दिन सुबह जप कर लेना चाहिए। यस वैसे आज तो शनिवार रविवार है तो उस दिन यमदूत को भी छुट्टी होती होगी ना। आईटी इंडस्ट्री में होते हैं आज ज़्यादा कस्टमर्स, आईटी इंडस्ट्री के ही होते हैं। सब जगह से होते हैं, तो हमें पता है किसी भी दिन मृत्यु हो सकती है, इसलिए हर दिन भगवान का नाम लें। आपको लगेगा प्रभु ये 16 माला तो सुबह जप करना ये तो कंपलसरी नहीं है, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं कोई नियम नहीं है भगवान का नाम लेने में, तत्रार्पिता नियमिता स्मरण ही न काल, फिर क्यों इस तरह जोड़ दिया है? लेकिन अगर हम सवेरे करते हैं तो पूरा दिन हमारी चेतना एकदम स्पष्ट रहती, हमें 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 तैयार रहना है किसी भी समय। जैसे आपको मालूम है अभी कश्मीर बॉर्डर पे हमेशा टेंस एटमॉस्फेयर रहता है, टेररिज्म चल रहा है और सब जो सेना वायु सेना स्पेशली रेड अलर्ट रहते, जैसे हमारा माया के साथ युद्ध हमेशा चल रहा है, ये कभी नहीं होगा कि समझौता होने वाला है, समझौता तब होगा जब हम गोलोक पहुंच जाएंगे, बस जब तक यहाँ पे लड़ाई चलती रहेगी अलर्ट रहना। अभी आपने, मैं तो पॉलिटिक्स में उतना नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत सुनता रहता हूँ कैसे भारत ने 26 फरवरी को जब अटैक किया था पाकिस्तान बेस पे, और उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में आए थे 26 फरवरी का। तो ये अटैक जो है ये सवेरे के समय किया गया था 3-4 बजे। इसका एक मैं एक पर्पट बता रहा हूँ जो जो शास्त्रों में नहीं दिया है। तो टेररिज्म मतलब क्या है कि जैसे जो इलाका है कश्मीर का, एक्चुअली वो भारत का इलाका है, उसको पाकिस्तान के बहुत से लोग ने कब्जा जैसे कर रखा है, राइट, बोलते हैं POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जैसे हमारा हृदय जो है वो कृष्ण का इलाका है, वो कृष्ण की भक्ति के लिए, लेकिन वो हार्ट कृष्ण का है लेकिन माया ने कब्जा कर रखा, तो MOH है, माया ऑक्यूपाइड हार्ट, यू नो। उसके कारण क्या हो रहा है कि इसमें टेररिज्म बहुत फैल गया और 6 प्रमुख टेररिस्ट हैं उसमें, वो कौन कौन है हाँ आप जानते हैं क्योंकि आपने उनसे दोस्ती भी कर ली है ना। इतने जन्मों से है कि आपको लगता है कि वही यहाँ के मालिक हैं। हमें क्या करना है, अटैक करना है, है ना, ये 6 टेररिस्ट को। और अगर हम चाहते हैं, जैसे क्यों सुबह के समय अटैक किया गया, क्योंकि बाद में करते तो वो शायद जाग रहे होते, रातों रात तो उनका वध करना था। ऐसे हम भी सुबह सुबह अटैक करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, यू नो, इसके पहले कि वो जागे कम से कम 16 फायरिंग करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, और फिर दिन भर भी अलर्ट रहने। क्योंकि जैसे ही भारत का आक्रमण हुआ, अगले दिन फिर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, तो जैसे आप जब अच्छा करोगे तो माया और अटैक करेगी। ये मत सोचो कि लड़ाई खत्म हो जाएगी आसानी से, ये चलती रहेगी। लेकिन अंत में कृष्ण बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड इज वेरी डिफिकल्ट, मेरी माया शक्ति को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, जो कृष्ण की शरणागति में आ जाता है, वो पार कर सकता। कृष्ण की शरणागति का मतलब क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण भक्ता, नाम के रूप में शरणागति को स्वीकार कर। तो हर क्षण हमें प्रयास करने के कृष्ण को याद करें, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में है, वो बताते हैं, दुष्कर्म सुकर्म भवेत। बहुत मुश्किल से मुश्किल कार्य है वो बहुत आसान हो जाता है, कैसे? अगर आप चैतन्य महाप्रभु को याद करते, और आसान से आसान कार्य मुश्किल हो जाता है, कैसे? अगर आप चैतन्य महाप्रभु को भूल जाते। तो भक्त के लिए सबसे मुश्किल कार्य क्या है? ध्यान पूर्वक जप करना, नहीं? बाकी सब चीजें थोड़े प्रैक्टिस से आ जाते हैं। आपको लेक्चर देना है, आप थोड़े से लेक्चर सुनो, थोड़ा अभ्यास करो, आप लेक्चर दे सकते। प्रसाद बनाने थोड़ा सीख लो, प्रसाद खाने कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कीर्तन लीड करना भी आप सीख सकते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक पुकारते हुए नाम लेना है गहराई में, ये रियल चैलेंज। उसके लिए हमें चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर। प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान कर, उनसे प्रार्थना करना। नहीं तो हम नाम जप करते रहते हैं लेकिन अपराध हो रहे हैं, तो इसलिए कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। लेकिन जैसे हम चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, जैसे हम पंचतत्व का आशीर्वाद लेते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त, अपने आप सारे बाधाएं दूर हो जाती। तो वसुदेव जी का यहाँ पे चरित्र का वर्णन किया गया कि वसुदेव जी कैसे समत्व भाव में, अभी उनके पहले पुत्र कीर्तिमान का जन्म हुआ है, अपने वचन के इतने पक्के हैं कि अपने पुत्र को ले जा रहे, अनडिस्टर्ब। महाभारत में कहानी आती है ऐसी कि जब महाभारत की लड़ाई में एक दिन जब जानबूझ के कौरव अर्जुन को कहीं दूर ले जाते हैं और सब मिलकर चक्रव्यूह की रचना किया होता, और चक्रव्यूह में किसी को प्रवेश करना पता नहीं था, सिर्फ अर्जुन को ही पता था, और द्रोणाचार्य ने जानबूझ कर चक्रव्यूह की रचना इस तरह से की थी। और जब अर्जुन दूर चले गए, अब युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव बस कोई चारा नहीं था, चक्र में प्रवेश करना कोई जानता ही नहीं, और नहीं प्रवेश किया तो हार है। अभिमन्यु को पता था, कहानी ऐसी कि जब अभिमन्यु गर्भ में था तब उस समय अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे ये रहस्य कैसे चक्रव्यूह का। लेकिन हुआ ये कि जब वो सुन रहे थे और कैसे प्रवेश करना है वो सुन लिया था, उसके बाद सुभद्रा को नींद आ गई थी, तो क्लास में सोना बहुत डेंजरस हो सकता है तो उसको ये पता नहीं था कैसे बाहर आने, तो सब पांडवों ने बोला कोई बात नहीं आप अंदर प्रवेश करें फिर हम सब साथ में रहेंगे। तो अभिमन्यु ने प्रवेश किया, लेकिन उस दिन जयद्रथ ने तपस्या करके शिवजी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं एक दिन कम से कम पांडवों को पराजित करूं। तो शंकर जी बोले ठीक है अर्जुन को आप नहीं पराजित कर सकते, लेकिन तो एक दिन वो जयद्रथ टिके हुए थे, कोई और प्रवेश नहीं कर पाया, और अभिमन्यु फिर भी बहुत शक्तिशाली थे, एक साथ 6-6 महारथियों से लड़ रहे थे, अंत में अन्यायपूर्वक दुष्टता से इन 6 ने मिलकर उस वीर का वध कर दिया। तो उसके बाद जब अर्जुन लौट कर आए, वो विजयी होके आए थे त्रिगत नरेश के ऊपर, तो सब लोग उनको लगा था कि लोग मेरा स्वागत करेंगे, उन्होंने देखा सबका मुंह लटका हुआ है नीचे और सब निराश लग रहे हैं, उन्होंने पूछा क्या बात है, तब उनको जब समाचार मिला तो बहुत दुखी हुए। तो एक बार एक प्रोफेसर प्रभुपाद से पूछ रहे थे कि भक्त को तो समान भाव होना चाहिए, गीता में लिखा है सुख दुख को समान समझना, तो अर्जुन दुखी क्यों हुए? उसको पता नहीं है क्या कि मृत्यु तो आत्मा की नहीं होती, शरीर की होती है, फिर किस बात से वो दुखी थे? प्रोफेसर प्रभुपाद से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, जब हम कहते हैं कि भक्त दुखी नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को विरह के कारण दुख होता है, उसको शरीर का दुख नहीं होता, लेकिन दुख होता है कि वो वैष्णव जो मेरे पुत्र के रूप में थे उसका अब संग नहीं मिलेगा। जब महाप्रभु, जब हरिदास ठाकुर ने अपनी लीला का अंत किया तो महाप्रभु को भी दुख हुआ और खुशी भी हुई। खुशी हुई क्योंकि एक महान भक्त भगवत धाम चले गए, और दुख हुआ क्योंकि इन महान भक्त का संग नहीं मिले। तो भक्त का मतलब ऐसा नहीं कि कठोर हृदय होता है कि मान लो उनके किसी मित्र की मृत्यु हो गई या माता पिता की मृत्यु हो गई, उनको शोक ही नहीं लग रहा, उनको दुख तो लगता ही है, लेकिन वो उस स्थिति में भी अपनी सेवा को नहीं त्यागते। अर्जुन का गुण क्या था कि ये दुख को सहन करके भी अगले दिन वो और शक्ति से लड़ाई की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जयद्रथ का कल मैं वध करूंगा सूर्यास्त होने से पहले, और अगर मैंने नहीं किया तो मैं अपनी नगरी में प्रवेश करूंगा। जब ये समाचार जयद्रथ को मिला तो बहुत डर गया, वो भागने लगा। वो दुर्योधन को बोला, हरि बोल, मैं VRS ले रहा हूं, हो गया। लेकिन दुर्योधन बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। अभी देखिए दुर्योधन भी उसको बोल रहा है, मा शुच, डरो मत, ये ना, अहम त्वाम रक्षामि, ये ना। लेकिन दुर्योधन के रक्षा का मतलब क्या है? संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, जो रक्षा करने का वचन देते हैं वो स्वयं मर जाते हैं। नहीं, किसी व्यक्ति मुझे बोला था, प्रभु जी मैं तो लंबी आयु जीऊंगा, मैं रोज च्यवनप्राश खाता हूं, है ना। तो च्यवनप्राश आप डाबर वैद्यनाथ झंडू सभी ले लो, लेकिन अंत में मृत्यु होगी, क्योंकि च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया, उनकी भी मृत्यु होगी। लेकिन अगर आप भक्तों की शरण में आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा मृत्यु नहीं होगी, लेकिन अगर आप हरि नाम लेते हैं मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु के साथ आप उस जगह में अमरत्व के क्षेत्र में प्रवेश करोगे, जहां पर न जन्म है न मृत्यु है, और वो धाम गोलोक धाम। तो जब हमें नाम का आश्रय लेना है, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सुखे दुखे भूले ना को, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि सुख में या दुख में हमेशा पुकारना है हरी हरी। आपकी आवाज से लगता है आप 3 दिन से निर्जला व्रत रख रहे हैं, जोर से बोलिए हरी 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 हरी, हरी। भगवान हरि को याद करना। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और जयद्रथ भागने लगा, लेकिन दुर्योधन ने बोला आप रुक जाओ, और जानबूझ के जयद्रथ को बहुत दूर पीछे रखा गया, और अर्जुन अकेले बहुत तेजी से सारी सेनाओं को गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रहे थे। लेकिन फिर भी समय बीत रहा था, दोपहर का समय हो गया और अब संध्या काल करीब आ रहा है, क्योंकि सारी सेना कौरवों की इसी तरफ लड़ी थी कि कैसे अर्जुन को रोकना है। अंत में भगवान कृष्ण ने देखा, भगवान सोचा कुछ स्पेशल इफेक्ट्स करने होंगे। तो भगवान ने अपनी शक्ति से सूर्य को ढक दिया, और जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया, वो तुरंत सामने आ गया और अर्जुन को ललकारने लगा, हे अर्जुन कहाँ गए तुम्हारे वचन, तुमने वचन दिया था कि तुम अग्नि में प्रवेश करोगे, देखो सूर्यास्त हो गया। और अर्जुन का मन तो क्रोध तो खून तो क्रोध से खोल रहा था, लेकिन अब सूर्यास्त हो चुका है। जैसे बहुत पास में आया तो भगवान ने अपना सूर्य प्रकट, बोले ये सूर्य है और ये जयद्रथ। और भगवान ने उसको बताया कि आप सावधान रहना, इसका सिर काटना लेकिन जमीन पर नहीं गिराना। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसको वरदान मिला था, ये असुरों को बहुत हाईफाई वरदान मिल जाते हैं। इसका वरदान क्या मिला था कि जो इसका सिर जमीन पे गिराएगा उसका भी सिर कट जाएगा। कितने इंटेलिजेंट, ये मूर्खों का भी इंटेलिजेंस कैसे होगा? भगवान ने बताया कि इसके पिता हैं, वो तपस्या कर रहे हैं समंत पंच कुरुक्षेत्र में, एक इलाके में तपस्या करो कि उसका सिर जब उसके पिता की गोद में गिरे, और पिता की गोद से जमीन में गिरा, तो इसका मतलब उसके पिताजी ने गिरा है। Nobody is more intelligent राधिका रमण ने ना। ये असुरों को मालूम नहीं है कि वरदान मांगने के समय बुद्धि भी भगवान ही देते हैं, मत स्मृति, बुद्धि स्मृति सब, बुद्धि बुद्धि मतास्मि। तो जब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कृष्णा का है, तो आप कोई पासवर्ड डालो कृष्णा ब्रेक कर देंगे, ये ना। कृष्ण के लिए क्या मुश्किल। तो अंत में जय भगवान कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने अचूक बाण से उसका वध कर दिया। भगवान ने अर्जुन के प्राण को बचाया। आज के जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस बात पे जोर देते हैं कि भक्त का मतलब है कि जो बहुत समान भाव से है, सुख दुख में डिस्टर्ब नहीं होता। तो उससे मुझे एक कहानी याद आ गई एक महान भक्त की। बहुत सारे कहानियां याद आई। प्रभुपाद जी कितने सहनशील रहे। परीक्षित महाराज को शाप मिला, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है परीक्षित गढ़, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है मेरठ से आगे, जहाँ पर परीक्षित महाराज रहते थे कौशिकी नदी के किनारे। जब वो शमिक ऋषि के आश्रम में गए, पानी नहीं मिला, तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाल दिया। और फिर उसके बेटे श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया कि इसने सांप डाला उसके मृत्यु सांप काटने से हो जाए। तो परीक्षित महाराज को जब पता चला कि मेरी मृत्यु होनी है 7वें दिन, तो वो इतने शक्तिशाली थे कि वो शाप देने वाले को शाप दे सकते थे। बोलते थे कि तुम शाप दे रहे हो कि मेरी मृत्यु 7वें दिन, मैं शाप देता हूँ तुम्हारी आज ही मृत्यु हो जाए, 7 दिन में क्या होता देखा जाएगा। काउंटर कर्स्ट। परीक्षित महाराज क्या सोचने लगे, कृष्ण की दया है, ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। भगवान चाहते हैं कि मैं बैक टू गोरेट जल्दी जाऊं, मेरा RAC टिकट था कंफर्म हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं। सहन कर लिया उन्होंने। ऐसे प्रभुपाद जी कितने कष्ट को सहन किए। उनको हार्ट अटैक आया अमेरिका जाते समय 2 बार। अभी हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाए तो हम वापस आ जाते हैं, है ना, चलो भाई आज पर लेक्चर नहीं दिया कोई बात नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी हार्ट अटैक के बाद इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किए, सहनशील। तो यहाँ पर एक कहानी है चित्रकेतु महाराज की, जो आप जानते हैं लंबी कहानी है, हमारे पास 15 मिनट का समय है, तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि कैसे चित्रकेतु महाराज के अंदर ये गुण था। जैसे आप जानते हैं वो पहले तो बहुत आसक्त थे, उनके पास सब कुछ था लेकिन कोई पुत्र नहीं था। और फिर बाद में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसको उनका नाम रखा गया हर्षशोक। उनको बताया गया था कि ये बहुत सुख भी देगा दुख भी देगा, लेकिन उसे वो इतने खुश हो गए ये वरदान प्राप्त करके, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे उनको पुत्र का जन्म हुआ तो इतने खुश हुए, इतने खुश हैं, बताया गया कि वो खुशी के कारण चलते चलते गिर पड़ते। कभी ऐसा हुआ है कि आप गिर गए खुशी के कारण, इतने हैप्पी थे। और बाद में आप जानते हैं क्योंकि एक पत्नी को पुत्र हुआ, बाकी सब पत्नी ईर्ष्या करने लगे और बच्चे को जहर देके उसको मार दिया गया। तब इतने दुखी हुए कि चलते चलते गिर पड़े, है ना। मेटीरियल वर्ल्ड में जितना सुख होगा उतना दुख होगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर आप दुनिया में सुखी होना चाहते हो तो सुखी होने का प्रयास ही छोड़ दो, बस जो हो रहा है भगवान की कृपा मान, क्योंकि होना ही है, जो लिखा है वो होना ही है। तो फिर क्यों इच्छा करना ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, जो कृष्ण चाहे जावेदी राखे राम व्हाटएवर। इसलिए एक भक्त को अपने शारीरिक मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम है तो 7-8 घंटे मेहनत कर लिए, ब्रह्मचारी है तो मंदिर में सेवा कर ली, लेकिन मेंटेनेंस के ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है वो मिलना ही है। अगर ज्यादा मिल गया तो डॉक्टर की फीस में जाएगा, लॉयर की फीस में जाएगा, या चोर चुरा ले। और अगर घर वाले बहुत प्रेशराइज करें कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो प्रहलाद तो नारद मुनि बोलते हैं तो फिर जवाब देना चाहिए हाँ 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 हाँ, बस कुछ करना नहीं चाहिए, हाँ हाँ हाँ, यस यस। तो चित्रकेतु महाराज बहुत दुखी अवस्था में थे, फिर नारद मुनि अंगिर मुनि वापस आए और उसको फिर मृत पुत्र को वापस बुलाया। ये आसान नहीं है, बेटे की आत्मा वापस आ गई। कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं शरीर एक हैंडसेट की तरह और आत्मा सिम कार्ड है, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सिम कार्ड एक बार निकाला तो फिर डालना मुश्किल होता है। लेकिन नारद मुनि की शक्ति से वो आत्मा वापस आ गई, उससे बात करने लगे, हरी बोल वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। तो बोले मेरा जो भगवान की इच्छा से मैं इस घर में था, अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। बोले कौन से माता पिता, मेरे तो बहुत सारे माता पिता थे। जल्दी हम सोचते हैं माता पिता मतलब ये जन्म के माता पिता, इसके पहले आप गंधर्व थे, वो माता पिता देवता थे, गंधर्व देवता, गंधर्व माता पिता, ये हो सकते कई पशु शरीर में वो माता पिता। रियल माता पिता कृष्ण है, जो शाश्वत माता पिता। ये या वो व्यक्ति पिता है जो हमें कृष्ण के करीब ले आते, इसलिए गुरु को पिता माना जाता है। तो इस तरह से चित्रकेतु महाराज को ज्ञान हुआ और फिर वो बहुत सिंसियरली भक्ति करने लगे, इतने सिंसियरली साक्षात भगवान शंकरशन के दर्शन भी हो गए। और इस तरह से वो एक बार भ्रमण कर रहे थे और एक दिव्य विमान में, स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा दिया वो विमान था, और एक इलाके में पहुंचे जहां पर शिव जी बैठे हुए थे और बहुत सारे सभा थे संत की और प्रवचन कर रहे थे और पार्वती उनके गोद में थी। तो चित्रकेतु महाराज को हंसी आ गई और वो इतने जोर से हंसे कि पार्वती ने भी सुना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि ये अभी हम जो घटना होने वाली है, पार्वती शाप देने वाली है, ये भी भगवान का प्लान था। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु महाराज जल्दी जल्दी उनके धाम वापस लौटे। तो जब अपने भगवान की शरण ले ली तो कुछ भी अमंगल नहीं होता, जो अमंगल लगता है वो भी मंगलमय, और अगर आप भगवान की शरण में नहीं हैं तो मंगलमय लगता है वो भी अमंगल है, क्योंकि भगवान का स्मरण ही मंगलमय है, भगवान को भूल जाना ही अमंगल है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब चित्रकेतु महाराज ने थोड़ा कमेंट किया कि यहाँ पर शिव जी ये महाजन में से एक हैं, धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, और सभा में इस तरह से ये ठीक नहीं है, इनकी जटाएं धारण किए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मान लो कोई एक निर्लज साधारण व्यक्ति हो। अभी फर्क ये कि चित्रकेतु महाराज शिव जी की निंदा कर रहे हैं, दक्ष ने भी शिव जी की निंदा की, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दक्ष के हृदय में ईर्ष्या का भाव था, उनका क्रिटिसिज्म था वो इस भावना से नहीं था कि कुछ सुधारने के लिए बताने के लिए, लेकिन चित्रकेतु महाराज एक प्रकार से आश्चर्य में बोल रहे थे और वो एक प्रकार से उनको बचाना भी चाहते थे। तो वो बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, साधारण व्यक्ति भी अपनी पत्नी से मिलते हैं लेकिन अकेले स्थान में, अरे सबके सामने कर रहे हैं, तो महादेव हैं, उनका एक नाम है महाव्रत धीर, जो धीर हैं, अपने आश्चर्य प्रकट किया। तो शिव जी मुस्कुराने लगे, शिव जी ने बुरा नहीं माना कि शिव जी चित्रकेतु के मन की भावना को जानते थे, वो जानते थे कि इनके हृदय में ईर्ष्या का भाव नहीं है, इसलिए मुस्कुराते रहे। भगवान शिव जी का एक, अभी ये जो शिव जी का व्यवहार है ये उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि शिव जी या ब्रह्मा जी या भगवान विष्णु, इसे बताया गया तेजो वरम न दोषयेत, वो ऐसी कोई क्रिया कर सकते हैं उनके लिए कोई दोष नहीं होता। जैसे यहाँ पर कुछ गंदगी है बाहर गटर के पास, किसी ने कुछ मलमूत्र किया है, तो सूर्य की किरण जब पड़ते हैं तो उसको स्वच्छ कर देते हैं, लेकिन अगर और कोई व्यक्ति पास में आता है तो वो स्वयं अपवित्र हो जाता। ऐसे शिव जी भांग भी पी सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि शिव जी भांग पीते हैं, मैं शिव जी का भक्त हूँ, जय भोलेनाथ जय शंकर, सोमवार को बेलपत्र मंगलवार को भांग, ये ना जय भोलेनाथ। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं यस, शिव जी ने उसके पहले समुद्र जहर का पिया था, आप एक गिलास पी के दिखाओ, महाप्रसादे गोविंदे, आगे का लाइन आएगा ही नहीं, ये ना यू कैनॉट इमिट। जैसे कृष्ण भगवान रास लीला करते हैं जब उनकी उम्र 8 साल थी, 7 साल की उम्र में गिरिराज धारण करते हैं, आप तो टेबल भी नहीं उठा सकते 7 मिनट के लिए, और अपने आप को कैसे कृष्ण कह सकते हैं, वी कैनॉट इमिटेट। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वी कैनॉट इमिटेट ग्रेट डेमीगॉड्स लाइक महादेव, नारद मुनि। अभी नारद मुनि देखते हैं प्रहलाद की माता को एक निर्जन स्थान में उपदेश देते हैं कयाधु को, जब प्रहलाद गर्भ में होते हैं। प्रहलाद का जो फर्स्ट भागवतम क्लास था वो माइनस फ्यू मंथ्स में था, ये ना जन्म से पहले ही था, ये ना उनका अंदर से डीवाई स्कोर चल रहा था। तो प्रहलाद की माता अकेली थी, नियम के विरुद्ध है किसी माता के साथ अकेले में बैठना एक ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए, लेकिन नारद मुनि के लिए नियम। हरिदास ठाकुर के सामने जब वेश्या आई तो हरिदास ठाकुर बोल सकते थे अरे ये चले जाओ आप, दूर चले जाओ, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। हरिदास ठाकुर बोले बैठो बैठो, जब सुनो आप, अभी हमारे में से कोई ये नकल करता है तो हरि बोल, वो आखिरी समय होगा उसका स्पिरिचुअली। तो कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही एडवांस डिवोटी कर सकते हैं, और शिव जी उनमें से एक हैं। तो शिव जी मुस्कुरा रहे थे और जो बाकी सभा के लोग थे वो भी समझ गए, नहीं तो वैष्णव एटिकेट से कोई निंदा कर रहे तो कान बंद करके भाग जाना चाहिए अगर विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सब समझ रहे थे। लेकिन पार्वती बहुत क्रोध लगा, एक्चुअली प्रभुपाद अलग अलग तरीके से बता रहे हैं. एक पहले तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज की गलती नहीं थी, फिर इस पर्पट में बोल रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज की गलती थी. एक ही अध्याय में प्रभुपाद दोनों अपेरेंटली कॉन्ट्रेडिक्ट बता रहे हैं. प्रभुपाद सेज हियर, चित्रकेतु शुड नॉट हैव क्रिटिसाइज्ड लॉर्ड शिवा. द डिफिकल्टी वॉज दैट चित्रकेतु बिकेम अ ग्रेट डिवोटी एंड ही बिकेम प्राउड एंड ही वॉज थिंकिंग आई कैन क्रिटिसाइज एनीबडी. उनको लगा अभी मेरे को डायरेक्ट भगवान के दर्शन हो गए, मैं किसी की भी निंदा कर सकता हूँ. तो मतलब बहुत केयरफुल रहना चाहिए. हम भक्त में थोड़े आगे बढ़ गए, हम सीनियर बन गए, हमारे भी कोई काउंसलिंग हो गए, कोई हफ्ते में एक बार हमारी भी जय जयकार करने लगा और आगे बढ़ने पर रोज हो जाएगा, हम सोच के इतने खुश हो गए. अभी मेरे को अधिकार है इसको जज करूँ, ये मेरे से भी सीनियर हैं या ये या दूसरे भक्त हैं, उनकी गलतियों को मैं हाईलाइट करूँ. तो बेस्ट है कि भगवान पर छोड़ देना. अगर किसी में कोई दोष है भी तो भगवान ठीक करेंगे. रघुनाथ भट्ट का यही मूड था, अदोषदर्शी. एक डिवोटी का गुण होता है अदोषदर्शी. कोई दोष है तो भगवान ठीक करेंगे. या अगर आप अथॉरिटी स्टडी में आप मैनेजमेंट में हैं तो कभी कभी करेक्ट करना पड़ता है, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुली. ऐसी घटना हुई थी प्रभुपाद लीला में, एक भक्त से कोई गलती हो गई थी. वो प्रेसिडेंट थे मंदिर के और किसी दूसरे भक्त ने बता दिया सबको. जब प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद जी बोले, मैं जानता था उसकी गलती है लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से सुधारना चाहता था. अभी आपने सबको बता दिया, उस भक्त के लिए वापस मंदिर में आना ही मुश्किल हो जाएगा. तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि किस तरह से हम ऐसी स्थिति को देखते हैं. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव शुड बी वेरी हम्बल. प्रभुपाद जी श्लोक बता रहे हैं, त्रिनादपि सुनिचे तरोरिव सहिष्णुना अमानी नमान देना कीर्तनी सदा हरि. बेटर टू रिमेन हम्बल एंड मीक एंड चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र. अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमें सहन कर लेना चाहिए. हमारी कोई निंदा करे तो सोचना चाहिए ये तो खाली एक पेज बोल रहा है, ये एक्चुअली पूरा 1000 पेज हो सकता है, इसको मालूम ही नहीं है मेरी लीलाएं क्या क्या हैं. हाँ, ऊपर से मैं ब्रह्मचारी हूँ, अंदर मेरे हृदय में क्या क्या चल रहा है, ये तो बहुत बहुत कम बता रहे. अपने बारे में कुछ सहन कर लेना चाहिए और दूसरों के गुण को गुणगान करना चाहिए. और हमारा कोई गुणगान करे सोचना चाहिए प्रभु ये गुणगान कर रहे हैं क्योंकि मैं भगवान की गुरु की कृपा से थोड़ी सेवा कर पा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरी कोई पात्रता नहीं है. भगवान एक गंदे पात्र में भी अमृत बरसा सकते हैं. मेरे जैसे अपवित्र धूर्त पापी में भी महाप्रभु की कृपा प्रवेश कर सकती है और मेरे गुरु की गुरु को उसको सारा क्रेडिट जाता है. तो पार्वती थोड़े गुस्से हो गए, बोले ये निर्लज ये कौन है जो हमको सिखाने के लिए आया. हम लोगों को निर्लज बता रहे ये. हाँ, किसने इसको बताया. ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं रहे. हाँ, नारद मुनि नहीं बोल रहे, भृगु मुनि नहीं बोल रहे, कुमार नहीं बोल रहे. उन्होंने क्यों नहीं मना किया. और ये चित्रकेतु सारे क्षत्रियों में अधम है, इसने ब्रह्मा जी और शिव जी को भी, ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा करके मेरे पति शिव जी का अपमान किया है. शिव जी तो साक्षात पूरे दुनिया के गुरु हैं, अखिल गुरु, और उन शिव जी का उसने अपमान किया है, मैं उसको सजा दूंगी. ऐसा कहकर पार्वती देवी सोचने लगी कि ये व्यक्ति सोच रहा है मैं बेस्ट हूं, तो भगवान के चरणों में कभी नहीं जा सकता. तो प्रभुपाद परपुर में सेकेंड टाइम लिखते हैं. ये पहली बार देख रहे हैं कि एक ही अध्याय में एक श्लोक के बाद अगले श्लोक में फिर से प्रभुपाद जी बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचे ना त्रिनादपि सुनिचे. प्रभुपाद बोलते हैं इफ अ डिवोटी थिंक्स दैट आई एम वेरी एडवांस्ड ही बिकम्स अनफिट टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट. जैसे प्रभुपाद जी को प्रभुपाद बोलते हैं. प्रभुपाद के दो अर्थ हैं, कि प्रभुपाद का मतलब जो भगवान के चरणों में हमेशा, और जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभु रहते हैं उनको प्रभुपाद कहते हैं. लेकिन अगर कोई अभिमानी हो जाता है तो भगवान के चरणों में रहने के लिए अयोग्य बन जाता है. और लास्ट पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं अनलेस वन इज मीक एंड हम्बल वन कैनॉट क्वालिफाइड टू सिट एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. जब तक कोई व्यक्ति बहुत नम्र नहीं बन जाता भगवान के चरणों में नहीं बैठ सकता. बाइबल में कहा गया ओनली द हम्बल एंड मीक शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. भगवान का राज्य वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता. तो पार्वती क्रोध में आके शाप देती है उनको कि तुमको असुर परिवार में जन्म मिलेगा. और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब चित्रकेतु महाराज को पता चला तो वो क्रोधित नहीं हुए, अपने विमान से नीचे उतरे, पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, बड़ी नम्रता से बोले हे माता मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है कि किसी को क्या शाप मिलना है। जो भी होने भगवान की प्लान होते हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो भुंजा नहीं वात्म कृताम विपाकम, ये भगवान का प्लान है। अभी मेरे को बिना कारण सजा मिल रही है, मतलब ऐसा होगा पहले मैंने कुछ किया होगा उसकी सजा नहीं मिली होगी, तो बैलेंस हो रहा है सब, क्योंकि भगवान के हिसाब में कोई गलती नहीं होती। ये भगवान का प्लान है, ये मेरे लिए अच्छा है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भगवान की भक्ति कर रहे भगवान उसके कर्म बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तब विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवान चित्रकेतु महाराज को इसी जन्म में भगवत धाम ले जाना चाहते थे, इसलिए उनके सारे पूर्व जन्मों के पाप को नष्ट करना चाहते थे। तो बड़े खुशी के साथ चित्रकेतु महाराज ने 5-6 श्लोक बोले पार्वती देवी को कि ये दुनिया जो है ये तो नदी के समान है, नदी में कुछ तिनके एक साथ एकत्र होते हैं फिर सब अपने अपने स्थान में चले जाते हैं, इसलिए सब भगवान ही हैं जो सबको मिलाते हैं सबको अलग करते हैं। आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हो बिना कारण के, नहीं बताया कि मैंने कुछ, मेरा इरादा बुरा नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि मेरा शाप आप निकाल दो। यू आर अननेसेसरली एंग्री विद मी बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर एक्सक्यूज टू बी रिलीव्ड। मैं नहीं बोल रहा कि मेरी गलती नहीं है, आप बिना कारण दे रहे हो, तुरंत विड्रॉ कर लो नहीं तो मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। नहीं, आपने ऑल्दो व्हाट यू हैव सेड इज रॉन्ग, प्लीज लेट व्हाट एवर यू थिंक इज रॉन्ग बी पार्डन्ड। आप चाहे जो अब जो आपने बोला है, जो मैंने बोला है वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने में कोई गलती है उसको माफ कर दो। ये बहुत अच्छा एटिकेट है। मैंने तो कुछ गलती मेरे हिसाब से नहीं की है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि में गलती है मेरी तो मुझे माफ कर दो अपराध के लिए। और पार्वती देवी चित्रकेतु ने शिव जी को भी प्रणाम किया और फिर प्लेन में बैठ के वापस चले गए। अब शिव जी का व्यवहार देखो, शिव जी ये सब देख कर हंसने लगे और पार्वती को बोले दृष्ट्वासी सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः। वो बोले हे मेरी प्रिय पार्वती, उसके लिए शब्द यूज किया है जो बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्यों बोल रहे हैं सुंदर, पार्वती को बोल रहे हैं तुम तो शरीर से सुंदर हो लेकिन भगवान के भक्तों से तुम कॉम्पीट नहीं कर सकते। जो भगवान के भक्तों हैं, जो दासों के दास हैं, वो कैरेक्टर में सुंदर होते हैं। तुम्हारा तो बाहर से शरीर सुंदर है लेकिन भगवान के प्योर डिवोटी चित्रकेतु की तरह वो कैरेक्टर में शुद्ध हैं। इसीलिए हालांकि तुमने उनको शाप दिया, उनको क्रोध भी नहीं आया, वो उतर के आपको प्रणाम किए, ये भक्त की महानता है। बाय माइल्डली टॉलरेटिंग योर कर्स ही हैज एक्सेल्ड द ग्लोरी ऑफ योर ब्यूटी एंड योर पावर टू कर्स हिम। आपके शाप देने की शक्ति को उसने पराजित कर दिया सहन करने के द्वारा। मतलब सहनशीलता की शक्ति शाप देने की शक्ति से ज्यादा होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन कैन नो द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। महानता इसमें नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, महानता है सहन करने में। जब कोई दो भक्त में कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई फैसिलिटी के लिए, जो भक्त झुक जाता है उसको कृपा मिलती है और जो झुकता नहीं है उसको सुविधाएं मिल जाती है भौतिक, लेकिन उसकी प्रगति उतनी नहीं होती। तो झुकना ये कायरता का लक्षण नहीं है बल्कि महानता का लक्षण है। महाप्रभु बोलते हैं जो पेड़ में फल नहीं होते वो तने हुए खड़े रहते हैं, लेकिन जो पेड़ में फल होते हैं हमेशा झुकता रहता है। तो एक भक्त सबके चरणों में झुकता है क्योंकि सबके हृदय में भगवान के दर्शन करता है। और फिर वो फेमस श्लोक आता है, आप सब बोलिए नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके अनुवाद में कि जो नारायण परायण है, कृष्ण परायण है, न कुतश्च न बिभ्यति, किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होते, डरते नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरक, स्वर्ग मतलब स्वर्ग लोक, नरक मतलब नरक, और अपवर्ग मतलब मुक्ति, तीनों स्थिति में वो बराबर रहते हैं। क्योंकि वो जहां भी रहते हैं वो गाते हैं हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 राम। अगर आप नरक में कीर्तन कर रहे हैं तो वैकुंठ हो जाते हैं, नहीं आप नरक में जाके प्रचार करते हैं तो इस्कॉन कुंभी पाक ये ना, इस्कॉन मोहर और ये ना, यही प्रचार करते। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद आप अगला कहाँ पे आप लीला करना चाहेंगे, प्रभुपाद बोले मैं नरक प्लैनेट्स में जाना चाहता हूँ, वहां भी प्रचार करना चाहता। एक बार तो कुछ भक्त को ऑस्ट्रेलिया में जेल में डाल दिया बिना कारण के, कीर्तन के अपराध था, बड़ा अपराध, वो कहता है कीर्तन किया। तो प्रभुपाद को लेटर लिखा है, प्रभुपाद हम जेल में हैं, बाहर आने के लिए लॉयर चाहिए, लॉयर की फीस के लिए पैसे नहीं है, आप पैसे भेजो। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, बाहर आने की जरूरत क्या है, आप जेल में ही प्रचार करो, तो सब कुछ बराबर है। मेरे सामने, मैं जब जुहू में जाता था 78 में, एक कोई केस हो गया था, किसी और व्यक्ति ने मर्डर किया था, भक्तों पे नाम डाला गया था, तो उस स्थिति में कई भक्त जेल में थे जुहू मंदिर के, और वो जेल में ऐसे प्रचार हुआ कि जेल के सब लोग जप कर रहे थे, है ना। और प्रसाद हम जुहू टेम्पल से ले जाते थे, राधा रस बिहारी से, और जेल के अंदर किया जाता, और जेल में लोग तिलक लगा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। मेरे मन में आ रहा था कि सब बम्बई वासियों को वहाँ थोड़ा देर भेजा जाए, यहाँ भी देर दूर नहीं है। तो 5 मिनट मैं और बोलूँगा, लास्ट कंक्लूजन। इसके बाद जब ये सब के बाद ये सब घटना ये दिखा रही है, बाद में इसके बाद क्या हुआ, इनका जन्म हुआ वृत्रासुर के रूप में। वृत्रासुर के रूप में ये इंद्र से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते करते क्या हुआ, इंद्र ने गदा फेंकी और वृत्रासुर ने अपने आप को बचा लिया। उसका एक बार तो वृत्रासुर ने उठाया कि ऐसे फेंका कि इंद्र अपने हाथी के साथ पीछे 40 फीट नीचे गिर गया, निताई गौर प्रेमानंद है, लेकिन वो प्रेमानंद नहीं था, वो दुखियान। तो फिर वृत्रासुर बोलने लगे, उठो उठो इंद्र, घबराओ मत, ये पूरी दुनिया एक गेम की तरह है, और ये परम भगवान ही डिसाइड करते हैं कौन सा पासा कब खेला जाएगा, विजय पराजय भगवान के हाथ में। आपने गदा फेंकी, वो गदा फेंकना ऐसा था जैसे कंजूस आदमी से डोनेशन मांगना, लेकिन अब आपके हाथ में वज्र है जो भगवान विष्णु की शक्ति से भरा हुआ है, वो वज्र लो और मेरे को मारो, मैं भगवत धाम जाऊंगा और आप इंद्र बने रहना, हरि बोल। प्रभुपाद लिखते हैं, जब लड़ाई हुई उसमें इंद्र ने वृत्रासुर को मारा, लेकिन एक्चुअली कौन जीता लड़ाई में, वृत्रासुर, उसे भगवत धाम मिला। अभी दो जेल में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और एक ने उठा के दूसरे को जेल से बाहर फेंक दिया, तो कौन भाग्यशाली है, जब बाहर निकल गया वो भाग्यशाली, अंदर है कि वो ऐसी कमरा रह रहे जेल में क्या फायदा। तो ये प्रार्थना है जिससे मैं एंड करना चाहूंगा। इंद्र के सामने वृत्रासुर बोल रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूले दासानुदासो भवितास्म भूय मना स्मरतेषु पतेर्गुणास्ते गृह्णति वा कर्म करोति काय। हे भगवान, कब मैं आपके दासों का दास बनूंगा, यही मेरी अभिलाषा है। मेरा मन आपका गुणगान करे, सॉरी मेरे वचन आपका गुणगान करे, मेरा मन आपका स्मरण करे और मेरा शरीर आपकी सेवा में लगे। प्रभुपाद लिखते हैं, ये वैष्णव का सार है, दास दास अनुदास, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। हमें यही नहीं सोचते कि भगवान का दास हूं। जो व्यक्ति कहते हैं भगवान का दास हूं, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जो भगवान के भक्तों के दासों के दास बनते हैं उनको प्राप्ति होती है। और फिर वो बोलते हैं, न नाक पृष्ठम न च परमेष्टा, मैं अनुवाद पढ़ूंगा सिर्फ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ध्रुव लोक नहीं चाहिए, ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, बस आपके चरण की सेवा चाहिए। सेम चीज महाप्रभु बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति, तांदेर चरण से ही भक्त सने वास, जन्मे जन्मे, भक्तों का संग मिले और हमेशा हरि नाम लू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वृत्रासुर अपने श्लोक आगे के श्लोक में बताते हैं 3 एग्जाम्पल, जैसे पक्षी हैं, आपने देखा जो छोटे पक्षी होते हैं घोंसले में, वो हिल भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, वो वेट करते हैं कब मेरे माता पिता आएंगे दाने ले आएंगे, या बछड़े, बछड़े जिनको रस्सी से बांधा है, वेट करते हैं कब उनकी रस्सी खुलेगी, वो दौड़ते हुए जाएंगे माँ के दूध पीने के लिए, या जो पत्नी जिसके पति कहीं बाहर गए हैं, वो इच्छा करते हैं कब पति लौट के आएंगे, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ कि कब मैं आपके साथ फिर से रहूँगा। और प्रभुपाद जी लास्ट श्लोक में बोलते हैं, आई एम वॉन्डरिंग थ्रू आउट दिस मेटेरियल वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माई कर्म, आई सीक 3 थिंग्स, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड फ्रीडम फ्रॉम द अटैचमेंट टू बॉडी वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड कॉन्स्टेंटली सींग योर ग्लोरीज। मेरा मन हमेशा आपका गुणगान करे, मेरे संसार की पत्नी बच्चे और घर से आसक्ति, या ब्रह्मचारी भी हो तो लॉकर और ये ना, जैसे एक गृह मेधी होता है, एक बार आश्रम मेधी भी हो जाते हैं, ये ना आश्रम को सेंटर रख के अटैचमेंट हो जाते, ये सब मेरा ब्रेक हो जाए और मैं हमेशा आपका नाम गाऊं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो चित्रकेतु महाराज जब अपने वृत्रासुर हो, असुर परिवार में भी होके परम वैष्णव थे। ऐसे हरिदास ठाकुर एक और उदाहरण है सहनशीलता के। वो यवन मुसलमान परिवार से, लेकिन वो इतने सहनशील थे कि 22 मार्केट में पीटे जाने के बाद भी भगवान के नाम को याद कर रहे थे। तो ऐसे महान वैष्णव से हमें सीखना चाहिए कैसे हम सहनशील बने हर स्थिति में, क्योंकि सुख दुख आएंगे, चाहे आप भौतिक संस्था में हो आध्यात्मिक संस्था में हो। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, गलत फहमी होते हैं, कोई गलत बोल देता है, ये सब सहन कर लेना। हमें सोचना चाहिए कि इसने गलत बोला, कम से मारा तो नहीं, और मारा तो नहीं कि एक ही बार मारा, 22 मार्केट में तो नहीं मारा है ना, और मार दिया फिर मार ही दिया ना, मृत्यु तो नहीं है, मृत्यु हो ही गई तो फिर तो बोलना ही नहीं कुछ है ना। अभी सब थियोरेटिकल है, अभी मैं उतरने के बाद अगर कोई मुझे थोड़ा भी बुरा बोले तो बोलूंगा प्रभु जी आप क्या समझते अपने आप को, है ना, आई एम जस्ट स्पीकिंग थियोरेटिकली। फिर प्रश्न उठता है कि क्वालिटीज आएंगे कैसे। मैं एक लाइन में आंसर करूंगा प्रभुपाद के चैतन्य चरितामृत से। प्रभुपाद बोलते हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस कैनॉट बी अचीव्ड बाय वन एंडेवर, अपने प्रयास से नहीं बन सकते नम्र, ओनली बाय कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्ण वी गेट ऑल गुड क्वालिटीज। सतत हरि नाम लेने से सारे गुण आ जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम राधिका रमण के चरणों में 2 सेकंड आंख बंद करके प्रार्थना करें गौर निताई जगन्नाथ से कि हमारे अंदर ये सहनशीलता और नम्रता का गुण आ सके, जिससे हम भगवान के करीब पहुंचने के योग्य बन सके। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टीका, कई कमेंट्स? आई थिंक सम, यस, वन, ओनली वन क्वेश्चन। आप ऐसे ही बोल दीजिए।
हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जो चित्रकेतु महाराज थे, जब उन्होंने शिव जी और पार्वती जी को देखा तो उनके मन में जस्ट एक थॉट आ गया कि हाउ कुड दिस हैपन। सो ऐसे ही अगर हमें भी कभी लाइक जूनियर्स के प्रति अगर हमें कुछ देखे कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो वी कैन करेक्ट दैम, बट ऐसा कुछ अगर हम देखें कुछ जैसे हमसे सीनियर्स जो भक्ति में बहुत सालों से हैं, तो अगर ऐसा कोई थॉट आ रहा है तो मतलब ये भी एक अपराध है। बट अगर वो हम ये सोचते हैं कि जैसे आपने बताया कि वो भगवान का प्लान समझ के वी शुड लाइक मूव अहेड, बट वो डाउट दैट मे रिमेन इन आवर लाइक माइंड।
अगर बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कोई सीनियर भक्त से बोल सकते हैं कि प्रभु जी ये वैष्णव का ऐसा व्यवहार है क्या, मेरे समझने में गलत है, या वो करेक्ट कर सकते हैं उनको, जो मंदिर के कोई अथॉरिटी हो या उनसे भी सीनियर हो उनको बता सकते। यस, दिस लास्ट।
जैसे आपने बताया था जब तक कोई हम्बल एंड वीक नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जैसे पूतना थी वो तो भगवान को मारने आई थी, उन्हें गति मिल गई, और जो वॉरियर्स थे कुरुक्षेत्र युद्धभूमि जो लड़ रहे थे वो तो कोई हम्बल नहीं थे, उन सबको भी गति अच्छी मिल गई, ये सब कैसे समझे?
पूतना का स्पेशल VIP कोटा था, VIR वेरी इंपॉर्टेंट राक्षस। कभी कभी स्पेशल मर्सी हो जाती है भगवान की। पूतना ने न जानते हुए थोड़ी सेवा की थी, उसने भगवान को दूध दिया था। भगवान इतने दयालु हैं, वो ये नहीं देख रहे कि दूध के साथ जहर दे रही है। अभी आपको कोई दूध दे, अच्छा मसाला मिल, बादाम पिसते सिर्फ 10 ग्राम जहर के साथ, तो आप क्या धन्यवाद देंगे उसे? कृष्ण की दया की कोई सीमा नहीं। ये जनरल रूल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने कैसे दया की? गौर जगह ही मजा ही, तो कोई संडे फीस्ट में आए नहीं थे, कोई सेवा ही नहीं की थी उन्होंने। एक ही सेवा थी कि उन्होंने मटका मारा था सिर के ऊपर, खून खून बहाया था, उनको कृपा मिल गई। और बड़े बड़े चक्रवर्ती और मिश्र थे, उनको कृपा नहीं मिली, तो अचिंत। लेकिन आप ये मत सोचिए चलो मैं भी ऐसे करूँगा फिर मुझे भी कृपा मिल जाएगी। एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद ये बड़े बड़े राक्षस को भगवान ने मार दिया तो अगर मैं भी अगर असुर की तरह बिहेव करूं तो क्या भगवान आएंगे? तो प्रभुपाद बोले नहीं, स्टैंडर्ड असुर होना चाहिए थोड़ा। वी हैव टू हैव सम स्टैंडर्ड, ठीक है? तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे अनर्थों को दूर कर दो। ओके, भक्त पावर वृत्रासुर। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे। और क्या प्रश्न क्या है?
मेरा प्रश्न ये था कि जो भगवान कृष्ण वासुदेव जी के आए पास में और वृत्रासुर भगवान के धाम गए, तो इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन कहां से बढ़ता है आगे?
दोनों अपनी जगह परफेक्ट है। वृत्रासुर अपनी जगह में परफेक्ट है, वासुदेव अपनी जगह परफेक्ट है। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम कंपेयर करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। हम सोचते हैं प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ लेकिन आरती नहीं कर पा रहा, मैं आरती कर रहा हूँ लेकिन मैं प्रीचिंग नहीं कर पा रहा। जैसे भगवान ने बनाया वही परफेक्ट है ना। पांच उंगली परफेक्ट है अपने आप में, अंगूठा सबसे छोटा है लेकिन वो नहीं होगा तो कुछ नहीं पकड़ सकते। पांच पांडव भी परफेक्ट है, अगर हर कोई भीम बना तो प्रसादम प्रॉब्लम हो जाएगा। हर कोई अर्जुन बना तो सब गांडीव कहाँ कहाँ चलाएंगे, है ना। एवरी वॉट एवर यू आर जस्ट सरेंडर टू कृष्ण। अगर आप एकदम रिजेक्ट भी हो, कोई एबिलिटी नहीं है, बस खाली भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए मैं आपका सर्वेंट हूं, तो भी परफेक्शन। ओके, कई माताओं को कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ताली बजाने से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, स्पेशली डीटीज के सामने।